તારીખ 7/5/1994 શ્રી પરમાગમ સાર બોલ નંબર 236 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મુંબઈમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 93 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે તથા હમિંગનો અવાજ આવે છે.
પરમાગમ સાર સાગર લિખા હૈ લેકિન પરમાગમ સાર એસા નામ દિયા હૈ. ઉસમે સે પૃષ્ઠ સંખ્યા 15 વચનામૃત સંખ્યા 236 इस पेज पर चौथे नंबर का वचनामृत है. क्या कहते हैं गुरुदेव? ज्ञान में जैसे जैसे समझ के द्वारा भाव भाषण बढ़ता जाता है वैसे वैसे ज्ञान का सामर्थ्य बढ़ता जाता है. भाव भाषण ज्ञान गुण की अवस्था है. भाव भाषण श्रतांग गुण की अवस्था नहीं और चारित्र गुण की भी अवस्था नहीं. ज्ञान में भाव भाषण होता है. यहाँ स्वरूप के भाव भाषण का विषय चल रहा है. जैसा अपना परिपूर्ण आत्म स्वरूप है वैसा अपने ज्ञान में भाषित होने से वो लगने लगता है. वो भाषित होने का कारण यह है कि ज्ञान में ज्ञान स्वभाव मौजूद है. उपयोगो लक्षणम. भगवान उमा स्वामी ने सूत्र दिया है कि जीव का स्वरूप क्या, जीव का लक्षण क्या, जहाँ से वो पहचाना जाए यानी इसका भाव भाषित होवे के उपयोगो लक्षणम. ज्ञान की जो पर्याय है वो ज्ञान शक्ति, शक्ति की व्यक्ति है. शक्ति स्वयं परिणाम में कार्य करती है. अगर जानने की शक्ति नहीं होती तो ज्ञान पर्याय भी नहीं होती. आत्मा को जानने की शक्ति नहीं होती तो उसकी ज्ञान पर्याय नहीं होती. उस ज्ञान पर्याय में अनंत गुण का रूप, अनंत गुण का एक रूप होता है. ये विषय लिया है पंडित जी दीपचंद जी कासलेवाल ने अपने अनुभव प्रकाश में भी वो बात आती है और चिद विलास में खास करके उसका प्रकरण लिया है. चिद विलास में तो उसका प्रकरण लिया है. चिद विलास अध्यात्म के सिद्धांतों का बहुत सूक्ष्म ग्रंथ है. छोटा ग्रंथ है लेकिन बहुत सूक्ष्म सिद्धांतों की चर्चा पंडित जी साहब ने चिद विलास में की है. उसमें एक गुण को अनंत गुण का रूप होता है. दृष्टांत रूप से कि आत्मा का ज्ञान गुण है उसमें है पड़ा है वो अस्तित्व गुण का रूप है और ज्ञान में निराकुलता है वो सुख गुण का रूप है. ऐसे अनंत गुण का रूप एक गुण को मिलता है होता है तो एक गुण की पर्याय को भी अनंत गुण का रूप होने से पूरा अनंत गुण संपन्न आत्मस्वरूप का भाव भाषण यहाँ से होता है. यही कारण है. वरना तो ज्ञान से ज्ञान शक्ति की ही प्रतीति होगी, दूसरे गुण की प्रतीति कैसे होगी. लेकिन एक गुण को अनंत गुण का रूप होता है. जैसे जैसे ज्ञानाभ्यास होते चलता है. ज्ञानाभ्यास माने क्या? शास्त्र पढ़ना उसी को हम ज्ञानाभ्यास समझते हैं लेकिन वो व्यवहार कथन है. शास्त्र पढ़ना वो ज्ञान का अभ्यास है ऐसा कहना समझना एक व्यवहारिक तौर से बात है. वास्तव में ज्ञान ज्ञान का वेदन करे यही ज्ञानाभ्यास है. ज्ञान स्वयं अपने आप का वेदन करे, अनुभव करे, यही ज्ञानाभ्यास है। जैसे जैसे भीतर में इस अभ्यास प्रवर्तित होता है, चालू रहता है, स्वरूप का भाव भाषण बढ़ने लगता है, आने लगता है। और जैसे जैसे भाव भाषण बढ़ता है, वैसे वैसे ज्ञान का सामर्थ्य भी बढ़ता है। ज्ञान का सामर्थ्य क्या है? ज्ञान का सामर्थ्य है स्वरूप को ग्रहण करने की शक्ति को ज्ञान सामर्थ्य कहते हैं। ये बात चलती है शुद्ध अध्यात्म की। यहाँ पर को भी ग्रहण करता है ऐसा ज्ञान का सामर्थ्य है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। स्वपर ग्राहक शक्ति है ज्ञान की, लेकिन यहाँ वो प्रकरण नहीं है, यहाँ भाव भाषण का प्रकरण चल रहा है। तो आत्म स्वरूप को ग्रहण करने की शक्ति जो है उसको यहाँ ज्ञान का सामर्थ्य कहने में आया है। बहुत शास्त्र की धारणा हो जाए उसको ज्ञान सामर्थ्य नहीं कहते हैं। बहुत स्मरण में रह जाए, शास्त्रों के रेफरेंस सब के इधर वो लिखा है उधर वो लिखा है, उसको भी यहाँ ज्ञान सामर्थ्य नहीं कहते। कंठस्थ करने इसको भी ज्ञान सामर्थ्य नहीं कहते। पूरा शास्त्र कंठस्थ कर लेते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं कि पूरा का पूरा शास्त्र टीका समेत कंठस्थ कर लेते हैं। यहाँ तो स्वरूप का अनुभव के लिए जो ठोस कारण है ये ज्ञान सामर्थ्य की बात चलती है। और ये बढ़ते हुए ज्ञान सामर्थ्य द्वारा मुंह शिथिल होता जाता है। इसका असर क्या आता है श्रद्धान पर, इसका क्या असर आता है? कैसे आप भीतर में ज्ञानाभ्यास होने से ज्ञान की तो निर्मलता बढ़ती है, ज्ञान की तो स्वरूप शक्ति बढ़ती है ग्रहण करने की, और दूसरे गुण पर निमित्त नैमित्त के संबंध से दर्शन मोह है वो शिथिल हो जाता है। शिथिल हो जाता है माने कमजोर हो जाता है। सभी प्रकार के दूषित भावों में दर्शन मोह है वो सबसे बलवान है। उतना बलवान है दर्शन मोह, उतना बलवान है कि प्रकट आत्म स्वरूप को दिखाने वाला बोध मिलने पर भी दर्शन मोह जिसको तगड़ा होता है उसको कोई असर पहुंचती नहीं है। कृपालु देव कहते हैं कि जिसने दर्शन मोह रूपी गुदड़ी यानी रजाई ओढ़ी है उनको श्री गुरु का उपदेश की लकड़ी लगती नहीं है। लकड़ी को मारे ने तो लकड़ी मारे तो लकड़ी लगनी चाहिए, लेकिन रजाई ओढ़कर सोता है उसको तो लकड़ी भी लकड़ी नहीं लगेगी। क्यों? दर्शन में बहुत तगड़ा है। और जिसने धोती जैसा पतला पतली चादर ओढ़ी हो, धोती जैसे बारीक इतनी चादर ओढ़ी हो तो उसको उपदेश की लकड़ी लगती है। तो उपदेश किसको लगता है, किसको स्पर्श करता है, किसको असर करता है? कि जिसका दर्शन वो कमजोर हुआ हो उसको। जिसका दर्शन वो कमजोर नहीं हुआ हो उनकी बुद्धि कितनी भी तीव्र हो, विशाल हो, ज्ञान का सूक्ष्म कितना भी हो, उनका उनको श्री गुरु का उपदेश के असर नहीं पहुंचती। यहां से अपने आप को नाप लेना। क्या ये बात इसलिए कही कि अपने आप को नाप लेना है कि हमें उपदेश का असर होता है, किस मात्रा में होता है, तो हमारा दर्शन मोह का पोजीशन क्या है, परिस्थिति क्या है, वो मालूम पड़ जाएगा इस तरह से। जी हाँ, वो अत्यंत जरूरी है, प्रयोजन भूत है। अपने 6 दिन तक तो ये प्रयोजन भूत वाला सुबह स्वाध्याय चला। ये दर्शन मोह वाला जो प्रकार है, प्रकरण है, ये मुमुक्षु के लिए प्रयोजन भूत है। इस प्रयोजन भूत विषय को छोड़ करके हम ज्ञान बढ़ाने का शास्त्र स्वाध्याय शिविर आदि माध्यम से प्रयत्न करें, सिर्फ क्षोभ बढ़ाने का, तो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, शास्त्र स्वाध्याय से दर्शन वो कम कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमारा दर्शन वो का अनुभाग टूटे, उसी प्रकार से स्वाध्याय हो तो, वरना ऐसा भी हो सकता है कि उसी शास्त्र स्वाध्याय से दर्शन वो बढ़ भी सकता है। अगर हम शास्त्राभिनिवेश में आ गए तो, कि हम भी जानते हैं, तो दर्शन वो बढ़ जाएगा। बाह्य क्रिया तो वो की वो है, अनेक जीव एक शास्त्र एक साथ शास्त्राभ्यास करते हैं, किसी को दर्शन वो बढ़ता है, किसी को घटता है। गलती वो होती है कि पर लक्ष्य से जो शास्त्र स्वाध्याय करने में आता है। देखो, हम लोग प्रश्न भी ऐसे उठाते हैं दूसरों को समझने समझाने के लिए, हमारी चर्चा में इस तरह के प्रश्न आते हैं, वो भी हमें उचित नहीं लगना चाहिए, वो अनुचित है। हमारी जिज्ञासा में से ये बात आनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, दूसरों के लिए हमें स्पष्टीकरण कराना है। इसका मतलब क्या है कि हमें जरूरत कुछ नहीं है स्पष्टीकरण की, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। आधार शास्त्र का आधार लेना, ऐसे बात है। प्रश्न क्या है? शास्त्र आधारभूत है, यदि यथार्थ स्वाध्याय किया जाए तो, यथार्थ रूप से शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया जाए, अयथार्थ रूप से किया जाए तो ये शास्त्र शस्त्र रूप परिणम सकता है। क्या? शास्त्र भी शस्त्र रूप परिणमन कर देता है। वो तो ज्ञानियों ने इस विषय में तो बहुत मार्गदर्शन दिए हैं, हमारी योग्यता के अनुकूल ही हमारा स्वाध्याय होना चाहिए। जिस विषय का हम अधिकारी नहीं हो, तो अनधिकृत रूप से हम कोई विषय को हाथ में लेते हैं तो वो शास्त्र शस्त्र हो जाता है, शास्त्र शास्त्र नहीं रहता है। बहुत विवेक से काम लेना है। कृपालु देव के जमाने में तो यही पद्धति थी मुमुक्षुओं की, कि वो आज्ञा लेते थे कृपालु देव से कि हम वो ये शास्त्र पढ़े या नहीं पढ़े, या तो हम कौन से शास्त्र पढ़े, आपकी आज्ञा होगी वही शास्त्र हम पढ़ेंगे, हमारे स्वच्छंद से हमें कोई शास्त्र पढ़ना नहीं है। पर कृपालु देव भी उतनी सिस्टम मेंटेन करते थे उस वक्त। आत्मसिद्धि शास्त्र खुद ने लिखा, स्वयं का लिखा हुआ शास्त्र था, तो आज्ञा जिसको मिलती थी वही पढ़ सकते थे, दूसरे को नकल करने की भी इजाजत नहीं थी कि बिना आज्ञा कोई उसको पढ़ ले, क्योंकि उसमें बहुत सी क्रांतिकारी बात लिखी थी, नहीं पचे तो अभिनय और विराधना हो जाए। वापी ने कहा था, प्रत्यक्ष सदगुरु सुन नहीं परोक्ष जिन उपकार। तो सदगुरु तो सदमस्त है, जिनेन्द्र देव तो केवली है, हम सदमस्त को आगे करें, केवली को पीछे करें, ये बात बैठेगी कैसे? पात्रता होगी तो बैठेगी, पात्रता नहीं होगी तो विरोध करेंगे कि ये हमारे जिनेन्द्र परमात्मा की अवमानना है, अनादर होता है इसमें, ऐसा लगेगा। लेकिन ऐसा है नहीं। नीचे के गुणस्थान वाले को आगे रखना और ऊपर के गुणस्थान को पीछे रखना, ये कोई जैन परंपरा है? ये मेरा सवाल है। आप लोगों ने बहुत सवाल पूछा, एक सवाल मैं भी पूछ लेता हूं, कि क्या ये जैन परंपरा है कि अनादि से ये जैन परंपरा है? यही परंपरा है हमारे जैन में। क्यों? कि नमो अरिहंताणम के बाद नमो सिद्धाणम आता है अनादि मूल मंत्र में,
ऐसा क्यों? क्या ये सिद्ध भगवान ने सिद्ध भगवान के वो मानना है? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये हमारी अनादि परंपरा चल रही है। इसमें क्या रहस्य है? रहस्य है माने आत्म कल्याण का आशय कौन सा है इसमें? ये सवाल होना चाहिए अवश्य। ऐसे नहीं सुन लेना है कि है तो अनादि से मान लिया मान लिया, ऐसा नहीं चले। यही कारण है कि अनंत भगवान प्रत्यक्ष मिलते हैं, जबकि सिद्ध भगवान किसी को प्रत्यक्ष नहीं मिलते हैं। और प्रत्यक्ष योग का महत्व दर्शाने के लिए ये मूल मंत्र में ये व्यवस्था है अनादि से। चूंकि प्रत्यक्ष योग का कोई अल्टरनेटिव होता नहीं है। होता है क्या? हमारे ये सांसारिक जीवन में भी नहीं है। सांसारिक जीवन में भी अभी देखिए ये कम्युनिकेशन के कितने साधन हैं हमारे पास, पोस्ट कार्ड के लेकर के, 15 पैसा का पोस्ट कार्ड के लेकर के हम टेलीफोन से बात करते हैं, टेलीग्राम से हमारा मैसेज कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब तो टेलीफोन में वो टेलीविजन भी आ गया है, इससे आगे पर्दे पर ये कॉन्फ्रेंस हो सकती है, बुला सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं अपने कमरे में बैठे बैठे। हाँ, फिर भी ये अमेरिका के महासत्ता के जो सूत्रधार हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो प्रत्यक्ष मीटिंग क्यों करते हैं? उनको तो घर से बाहर निकलना ही जान की जोखिम है। फायरिंग होता है आजकल, ये जमाना आ गया है कि बड़े आदमी का खून कर देना कैसे से कैसे भी, फिर भी उनको बाहर निकलना पड़ता है, मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, देश विदेश में जा करके, अपने घर से क्या अपने देश से भी बाहर जाना पड़ता है उसको। क्यों? कि प्रत्यक्ष मिले बिना कहीं बातों का समाधान या विचारों का आदान प्रदान पर्दे पर हो सकता नहीं है। ये तो अनुभव सिद्ध प्रयोग है कि नहीं सबों का? ऐसे भी प्रत्यक्ष ज्ञानी के सदगुरु के बराबर परोक्ष जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि का उपदेश का उपकार हो सकता नहीं है। वो बात उन्होंने लिखी उस जमाने में, जानते थे कि लोग संप्रदाय के लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो जो भी अधिकारी जीव थे, सुपात्र जीव थे, उनको देने की इजाजत करते थे। लिखे थे तो सौभाग भाई के लिए लिखे थे। सौभाग भाई की अवस्था एकदम वृद्धावस्था हो गई, पढ़ सकते नहीं थे, आंख में दृष्टि कमजोर हो गई और स्मरण शक्ति भी कुछ कमजोर हुई। वो लिखे कि आपका बोध है, ऐसे तो मैं विस्मरण करने वाला नहीं, किंतु कोई पद्य रचना में हो जाए तो मैं कंठस्थ कर लूंगा। तो कृपालु देव ने कृपा करके एक दिन नडियाद में शाम को घूम करके आए, घर पे बैठे, अम्बालाल भाई को बोला कि तुम लालटेन है पकड़ करके रखो, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। एक धारावाही 142 पद की रचना कर दी। हाँ, एक बैठक में कर दिया। वो तो उनको तो बहुत अंतर में अलौकिक विकास था, विकास भी ज्ञान का कोई अलौकिक था। तो सौभाग भाई को भेज दी, फिर जिस जिसको इजाजत मिली उसको पढ़ने का मिला। आज तो हमको सर्व सामान्य को ये पढ़ना मिलता है, लेकिन सस्ता मिलता है तो कीमत ही होती नहीं है। नहीं मिले तो नाक रगड़ना पड़ता है, तभी उसकी कीमत होती है कि भाई साहब हमको कृपा करके हमें मिले, कृपा करके हमें मिले, फिर इसकी कीमत आती है। ठीक बात है। बहुभाग लोग ऐसे पूछते हैं ज्ञानी को कि हमें हम कौन सा ग्रंथ पढ़े, कौन सा शास्त्र पढ़े। तो पढ़ने का उनकी मुख्यता है, लेकिन हम क्या करें कैसे प्रयोग करे, हमारा प्रवर्तन प्रयोगात्मक रूप से कैसे करे, ऐसे प्रश्न लोग क्यों नहीं पूछते हैं, ऐसा वो प्रश्न उठाया था। ऐसा प्रश्न उठना चाहिए कि हम परिणमन में क्या करें, सिर्फ पढ़ कर करके पढ़ते ही रहे, सूक्ष्म बढ़ाते ही रहे, ऐसा विकल्प क्यों आता है? पर हम क्या करें, परिणमन में क्या करें, ऐसा विकल्प क्यों नहीं आता है पूछने का? ये प्रश्न होना चाहिए कि हम किस तरह से हमारे परिणमन में जहाँ खड़े हैं, आप जानते हैं हमारी अवस्था को, हमें एक कदम भी कैसे आगे बढ़े, कम से कम एक कदम आगे कैसे उठाए, किस तरह से उठाए, क्या पद्धति है कार्य की, ऐसा प्रश्न क्यों नहीं आता है? ऐसा प्रश्न आना चाहिए तो उसको प्रयोजन की दृष्टि है, ऐसे प्रश्न में प्रयोजन की दृष्टि सूक्ष्म है, तीक्ष्ण है। वरना क्या है कि ये ग्रंथ पढ़ लिया, बाद में आप बताओ दूसरा कौन सा पढ़े, लेकिन लिया क्या इसमें से? पढ़ा तो सही लेकिन इसमें से लिया क्या, ये बात है। यहाँ कहते हैं कि ज्ञान में जैसे जैसे समझ के द्वारा भाव भाषण बढ़ता जाता है, वैसे ज्ञान का बल, ज्ञान का सामर्थ्य स्वरूप ग्रहण करने का बढ़ता जाता है, और ये बढ़ते हुए सामर्थ्य के कारण से दर्शन मोह मंद होता है, शिथिल हो जाता है, उसका जोर टूटता है। भाव दर्शन मोह की बात लेना, परमाणु को तो कोई छद्मस्त देख सकता नहीं है, जो भाव में विपरीत श्रद्धान है उसका बल टूट जाना चाहिए, वो पतला हो जाना चाहिए, कमजोर हो जाना चाहिए, जो आगे जाकर के टूट सके। वहां दर्शन वो शिथिल होता जाता है, और दर्शन वो शिथिल हुए बिना भाव भाषण भी होगा नहीं, वो बात पीछे के पत्ते पर लिखा है, 300 नंबर के गुरुदेव के वचनामृत को 16 नंबर के प्रश्न में पहला वचनामृत है कि दर्शन मोह मंद किए बिना वस्तु स्वभाव ख्याल में नहीं आता। यानी दर्शन मोह मंद हुए बिना, किए बिना मतलब हुए बिना, वस्तु का स्वभाव, मैंने वस्तु का स्वभाव भाव भाषण में नहीं आता। कितना भी ज्ञान का क्षोभ तगड़ा हो किंतु दर्शन मोह साथ तगड़ा होता है तो स्वरूप का भाव भाषण आएगा नहीं, ये बात साफ है, ये सिद्धांतिक बात है, ये अध्यात्म का सिद्धांत है। जैसे द्रव्यानुयोग का सिद्धांत है कि द्रव्यानुयोग का सिद्धांत ये तो ना इन्वॉल्व होता है कि ज्ञानाभ्यास कारण है पर उसका तो निमित्त होकर के नैमित्तिक भाव में श्रद्धान को, विप्रयास को मंद कर देता है, शिथिल कर देता है। तो आपस में दो गुण का कार्य हुआ, वो द्रव्यानुयोग का विषय है। और दर्शन शिथिल होने से स्वरूप ग्रहण शक्ति भाव भाषण आता है, वो अध्यात्म का विषय। ऐसे द्रव्यानुयोग और अध्यात्म में एकदम डायरेक्ट संबंध पड़ता है। और दर्शन मोह का अभाव किए बिना या दर्शन मोह का अभाव हुए बिना आत्मा अनुभव में आता नहीं। जो स्वानुभव होता है उस वक्त दर्शन मोह का परिणाम टिक सकता नहीं है, उसका अभाव हो जाता है। पहले सबसे पहले अनादि मिथ्या दृष्टि को तो उपशम रूप अभाव होता है, क्षयोपशम और क्षायक रूप अभाव किसी को पहला नहीं होता। ये परिणाम इतने बलवान है जीव के दर्शन मौके कि जीव में अनंत संसार का परिभ्रमण रहने का कोई कारण हो तो यही परिणाम है, दर्शन मौके कारण से ही भटका है। तो पहला किसी को क्षय नहीं होता, क्षोभशम भी नहीं होता, उपशम होता है, कमजोर होने से दब जाता है, फिर क्षोभशम होता है, फिर क्षय में आता है, लेकिन पहले दबेगा सबको, ज्ञानाभ्यास से दबता है। कौन सा ज्ञानाभ्यास? ज्ञान में ज्ञान का वेदन करे वही ज्ञानाभ्यास, वही प्रयास करे, वही पुरुषार्थ करे, वही ज्ञानाभ्यास है। इससे दर्शन हो कमजोर होगा, कमजोर होगा तो दबेगा, जो बलवान है जिसको जोर है वो किसी से दबता नहीं है। ये दर्शन भूमि जहां तक जोर वाला था तो ये शास्त्र अभ्यास, अरे भगवान का साक्षात दर्शन भेंट हुई, अनंतवार ज्ञानी मिले, सब कुछ हुआ, यम नियम संयम पाला, चारित्रमो अति मंद किया, नौवे गृह तक जाए वहां तक चारित्रमो की मंदता किया, अग्ञान नव पूर्व तक ज्ञान का क्षोषण किया। दर्शनों की मंदता नहीं हुई तो भाव भाषण भी नहीं हुआ, अनुभव होने की बात तो अभाव में आती। सन्मुख दृष्टि में श्रद्धा, दृष्टि मैंने क्या श्रद्धा, तो जब स्वानुभव होता है उसी वक्त दृष्टि उन्मुखता बदल करके सन्मुखता को धारण करती है। इसके पहले दृष्टि है तो उसका रूख है, मुख है तो उल्टा ही रहता है। इसलिए मिथ्यात्व अवस्था में दृष्टि का कोई साधन या कार्य नहीं होता। ये जो दर्शन है जिसको हम दृष्टि कहते हैं तो उसकी ताकत टूटती है मनुष्य की भूमिका में। आखिर तक क्या प्रोसेस चलता है तो उसको कमजोर होते 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 उतना कमजोर हो जाए कि एक दफे दब जाए, तो उसी को समसमय दर्शन कहने में आता है। इस वक्त स्वभाव दृष्टि प्रकट होती है, उसी वक्त समय दृष्टि दृष्टि कहने में आता है। तो स्वानुभव प्रवत होती है प्रति दिन, तो इस स्वानुभव में क्या है कि ज्ञान साधन है। मनुष्य की भूमिका में साधन कौन है, ज्ञान साधन है। उसकी गाथा है पंचाध्याय में उत्तरार्ध के 401 नंबर की गाथा है कि ज्ञान विवेकम साधनम साधन आदि विधा उचित।
ज्ञान साधन है, जिस ज्ञान में स्वरूप का उभाव भाषण होता है उस वक्त ज्ञान बल, ज्ञान का पुरुषार्थ, ज्ञान के साथ पुरुषार्थ भी पैदा होता है, वही साधन है। और वही बढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, वृद्धिगत होता हुआ वो तो अनुभव को ले आता है, इसको स्वानुभव कहने में आता है। तो हमने स्पष्टीकरण करें बाद में। तो हम ये कहने जा रहे थे कि उधर ज्ञान का जो साधन कहा पर स्वानुभव उससे होता है, तो हमने एक क्रॉस क्वेश्चन इस वक्त रखा था गुरुदेव के पास कि फिर श्रद्धा का क्या कार्य है इस वक्त, वो बताइए आप। तो गुरुदेव ने कहा कि उस वक्त मंद मिथ्यात्व है, दूसरा कुछ नहीं है। इस ज्ञान बल के कारण मिथ्यात्व में मंदता आई है, और कोई इसका कार्य होगा वहां साधन रूप होता नहीं है। जो स्वानुभव होगा उसी वक्त सम्यक दर्शन, पीछे के समय में नहीं, उसी समय में सम्यक दर्शन होगा, उसको वहां सम्यक दृष्टि कहने में आता है। और ये जो भाई ने प्रश्न उठाया कि वहां तो स्वविकल्प द्वारा निर्विकल्प होने का विवरण ऐसा हिडिंग दिया है, वास्तव में ये हिडिंग टोडर में भी नहीं दिया है, हम लोगों ने दिया है। इस चिट्ठी में तो ऐसा लिखने की पद्धति उन दिनों में थी नहीं, लेकिन हमने विषय को खोल कर स्पष्टीकरण देने के लिए उसका हिडिंग दे दिया। तो इसमें वही कहना है कि ज्ञानी को भी निर्विकल्प ध्यान होने के पहले स्वरूप के विकल्प चलते हैं, और विकल्प को सब समझते हैं, इसलिए विकल्प के माध्यम से वहां समझाया गया है। वास्तव में विकल्प से निर्विकल्प हुआ जाता है ऐसा नहीं है। और इसका एक बहुत सुंदर स्पष्टीकरण श्री सुगानी जी ने अपने वचनामृत में 144 नंबर के वचनामृत में दिया है, पढ़ते हैं इसको। अब देखो क्या लिखा है, बहुत सुंदर बात आई है वहां, शायद इसमें भी है। हमारे जो सुगानी जी के वचनामृत जो छाते हैं इसमें लिए होंगे, 144 नंबर के है कि नहीं है देख लीजिए, अगर हो तो है 26 नंबर का पेज पर है, छाटा है हमने उसमें। निर्विकल्प ध्यान के पहले अनेक प्रकार का चिंतन घंटों तक चले, तो वो तो घंटों तक बैठते थे, चलता था, फिर भी वो चिंतन निर्विकल्पता का कारण नहीं है। स्पष्ट लिखा है कि नहीं लिखा है? तो वो चिंतन क्या है कि वो तो अटकाव है, अंतराय है, वो चालू रहेगा वहां तक निर्विकल्प अनुभव आएगा नहीं। तो फिर कहते हैं आगे कि निर्विकल्पता तो अंतर में उग्र अवलंबन से ही होती है, वो तो पुरुषार्थ का कार्य है। जो पुरुषार्थ से स्वरूप का अवलंबन ले लिया गया है ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी की चर्चा चल रही है, वहां भी ज्ञानी की चर्चा चल रही है, टोडरमोजी की चिट्ठी में भी, यहां भी ज्ञानी की चर्चा चल कि जिसने अवलंबन तो लिया हुआ है उसमें उग्रता आती है तब निर्विकल्पता होती है, विकल्प पैदा नहीं होता। क्यों? कि स्वरूप तो निर्विकल्प ही है, उसका अवलंबन का जोर बढ़ जाता है तो विकल्प पैदा नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, उसको टूट गया, अभाव हो गया, नाश कर दिया, ऐसा कहने में आता है। निर्विकल्पता तो अंतर में उग्र अवलंबन से ही होती है, विचार रूप ध्यान तो अटकाव है, वो तो विचार वाला ध्यान है, वो तो अटकाव है, वो विचार वाला ध्यान की आराधना हमें नहीं करनी है, उसको हमें नहीं बढ़ाना है, उसको हमें खत्म करना है, ये बात है उसमें। ये कार्य पद्धति क्या है कि विचार रूप ध्यान तो अटकाव है, होता है, होता है मतलब आ जाता है उसके स्वकाल में, लेकिन वो अवलंबन नहीं है, वो साधन भी नहीं है। अवलंबन तो अंदर में लिया हुआ है, ज्ञानी ने अवलंबन तो अंदर में लिया हुआ है, उसमें ही उग्रता होते निर्विकल्पता होती है। यदि अटकाव रूप विचार आदि को कारण माना जाए, क्या कि यदि ये अटकाव वाले जो विचार है वही कारण है, वही साधन है, ऐसा माना जाए तो ऐसी मान्यता वाले को विचार से छुटकर अंदर आने का अवसर आता नहीं, ये बात है। इसलिए जो भी मुमुक्षु भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हम स्वरूप चिंतन करें, स्वरूप चिंतन हमारा चले होवे, तो भी हमको ये पूरा साफ साफ हमारे समझ में होना चाहिए कि ये अटकाव है, अंतराय है, ये कारण नहीं है, साधन नहीं है। जहां तक मान्यता में वो साधन कारण है ऐसा माना, निर्विकल्प ध्यान होने का अवसर आएगा नहीं। इसलिए ये सविकल्प चिंतन और ध्यान का प्रयोग के विषय में भी यही सूचना पहली जरूरी होती है, और ज्ञानानंदवादी में वो सूचना दी गई है। जो भी हमारे ध्यान के आगम है, शास्त्र है, उसमें वो सूचना है साथ साथ। क्या कहते हैं कि यदि अटकाव रूप विचार आदि को कारण माना जाए तो विचार से छुटकर अंदर नहीं आ सकते, अटकाव माने पर अंदर आ सकते हैं, क्योंकि उसका मोह रहेगा नहीं, वरना इसका मोह हो जाएगा, ये चिंतन का मोह हो जाएगा। हम 6-6 घंटा चिंतन करते हैं, हम 2-2 घंटा चिंतन करते हैं, ये बात साधन में होती ही नहीं है। कम पुरुषार्थ, कम शक्ति मैंने कम पुरुषार्थ लेना, ज्ञानी को भी कभी पुरुषार्थ के उतार चढ़ाव आती है अपने परिगमन में। कम पुरुषार्थ से, कम शक्ति से पर्याय में अनेक तरह का विचार चलता है। ये विचार क्यों ज्ञानी को विकल्प आया, स्वरूप का विकल्प क्यों आता है, तो पुरुषार्थ की मंदता के कारण से है। पुरुषार्थ की उग्रता होते ये पुरुषार्थ वाला शस्त्र विकल्प को मार डालेगा। क्या करेगा? वो एक पत्र में खुद लिखते हैं अपने विकल्प के लिए, अरे विकल्प तुझे तेरी आयु प्रिय हो, बहुत अलंकारिक भाषा में लिखते थे, ऐसे तो व्यापारी थे,
बाहर में, अंदर में ज्ञानी थे, फिर भी भाषा अलंकार बहुत आए उनके पत्र में।
अरे विकल्प तुझे तेरी आयु प्रिय हो तो गुरु चरण में ले चल मुझे, मुझे दूसरा विकल्प नहीं चाहिए। अगर विकल्प को जिंदा रहना है तो गुरु चरण में ले जाने का विकल्प को मैं थोड़ा स्थान देता हूं तो देता हूं, इस विकल्प को उतना ही स्थान देता हूं, वरना श्री गुरु का दिया हुआ शस्त्र तुझे समाप्त कर देगा, तुझे मार डालेगा, हम तो निर्विकल्प में चले जाएंगे। बात वो हुई थी कि खुद की कोई उदय की परिस्थिति ऐसी थी कि वो गुरु चरण में सानिध्य में नहीं रह पाते थे, बहुत छटपटाते थे ज्ञान दशा में भी, मुमुक्षु दशा में तो होता ही है राग ज्यादा तो और छटपटाहट बढ़ जाती है। ठीक है, अभी तो समझेंगे नहीं लोग इसलिए। तो इसको राग क्यों बोलते हैं, गुरु चरण में रहने वाले भाव को राग क्यों बोलते हैं, वास्तव में वो सही ज्ञान रूप भक्ति है, उनको खुला खुला ना वो बात है, थोड़ा परिचय है ना हमारा, वो बात खुलाना चाहती है कि वो ज्ञान को, उसको ज्ञान बोलो, उसको गुरु का ज्ञान हुआ है कि गुरु कैसा होता है, कि जिसके चरण में रहने से निर्मलता बढ़ जाती है, तो उसको भक्ति कहो, उसको भाव कहो, उसको ज्ञान कहो, राग क्यों कहते, वो हल्का नाम पसंद नहीं करते, तो हल्की बात है उसको, ऐसे भाव को गाली देना ऐसा लगता है तो वो पसंद नहीं आता है। बात वो है कि उस परिस्थिति में वो नहीं आ पाते थे सोनगढ़, बहुत छटपटाते थे, अरे कभी रोते थे, लिखते हैं कि ये बात आते ही आंखों में से गरम गरम आंसू टपकते हैं, इस परिस्थिति में रहना पड़ता था, तो कहते थे अरे विकल्प तो ये क्या विकल्प करता है, ये गृहस्थी का व्यवसाय का ये क्या चल रहा है, हम तो अंतर में लीन होकर के तुझे खत्म कर देंगे, फिर भी तुझे जिंदा रहना है तो उतनी दया करेंगे तेरे पर, कितनी कि अगर तुम गुरु चरण में मुझे ले जाता है तो, बहुत अलंकारिक भाषा में गुरुदेव की भक्ति किया है, इतनी तीव्र दृष्टि का जोर इनके वचनों में दिखाई देता है, इनके वचनों में भक्ति उतनी ही दिखाई देती है, ये दृढ़ दृष्टि का जो जोर है या निश्चय स्वरूप का जो पुरुषार्थ का तीव्र बल है, उसके साथ साथ ऐसे ही परिणाम होते ही है, तो वो बहुत स्वाभाविक है, इस साधक दशा में ये बहुत स्वाभाविक है, ऐसा ही होता है, करना पड़ता नहीं है। कहते हैं मुमुक्षु को इससे ज्यादा होता है, वो तो बोले हम बीच में आपका ध्यान में, ज्ञानी को आंसू आता था, ज्ञानी उतने चटपटाते थे, फिर भी उनको तो भीतर में अपने परमात्मा का साक्षात आलंबन और आधार भी था, और इसका बल भी था, इसकी दृष्टि भी थी और परिणति भी थी, फिर भी ये दशा थी, जबकि मुमुक्ष के पास तो वो संपत्ति नहीं है, तो उनको तो और अधिक ऐसे छटपटाहट के परिणाम हो जाते हैं, हो जाते हैं, करने पड़ते नहीं है, हो जाते हैं, वो बात है। वह यदि कम शक्ति से पर्याय में अनेक तरह का विचार चलता है, उसमें उल्लास भी होता है, आता है ना, तो प्रोडमी जी की चिट्ठी में रोमांच खड़े हो जाते हैं, आता है कि नहीं आता है श्री राम जी, उल्लास भी आता है, लेकिन वो उल्लास वाले विकल्प चिंतन आदि कारण नहीं है, अटकाव ही है। क्या लिखा है, ये बहुत साफ साफ अनुभवपूर्ण बातें हैं सब, पर वो तो बहुत ध्यान के अभ्यासी थे, खुद तो बहुत ध्यान के अभ्यासी थे, उन्होंने मुमुक्षु दशा में भी ज्ञान ध्यान का बहुत अभ्यास किया था योगादि का,
और ज्ञान दशा में भी ध्यान का बहुत प्रैक्टिस उनका चलता था। वो शास्त्र ज्यादा नहीं पढ़ते थे, कभी भी समय मिलता था वो एकांत में बैठ जाते थे कमरा बंद कर। तो कहते हैं कि मोह के अभाव में अनुभव होता है और दर्शन मोह की मंदता में भाव भाषण होता है। ये ज्ञान और प्रधान का आपस में अविनाभावी निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा होता है इसका ज्ञान कराते हैं जी। श्रद्धान पूर्वक ज्ञान नहीं होता, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है। इस समय सार के 17 अथरा गाथा का निर्देश है, उपदेश है। जो ज्ञान पूर्वक श्रद्धान को मानते हैं वो सही समझते हैं। श्रद्धान पूर्वक कभी ज्ञान नहीं होता ऐसी बात है, क्योंकि जिस चीज को जानी नहीं उसका श्रद्धान क्या। जैसे खरगोश को सिंह नहीं होता तो उसका श्रद्धान भी नहीं होता, जाने इसकी श्रद्धान होती है, श्रद्धान होती है उसका ज्ञान होता है, ऐसा नहीं होता है। ये एक साथ होने पर भी कारण कार्य का यही संबंध है, यही सिद्धांत है, यही वस्तु का स्वरूप है, ऐसी बात है। इसलिए यहाँ भावभाषण से तो गुरुदेव बात चला रहे हैं, ज्ञान से तो बात चला रहे हैं कि ज्ञान बलवान हुआ तो उससे दर्शन वो शिथिल होता जाता है, और ज्ञान जहाँ सम्यक रूप से परिणमन करता है स्वानुभव दशा में, पहले पहले शुद्धोपयोग होता है, इस वक्त सम्यक होगा, वहाँ मोह का समूह का नाश होता है, उदय हो ही नहीं सकता। परमाणु में प्रकृति का उदय नहीं होगा और जीव के परिणाम में मिथ्यात्व भाव का उदय नहीं होगा, प्रगति नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान सम्यक रूप परिणमा है, इसलिए काल दोनों का एक होने पर भी कारण कार्य का सिद्धांत तो ज्ञान से ही श्रद्धान होने का है, श्रद्धान से ज्ञान होने का नहीं है। और श्रद्धा ज्ञान पूर्वक ही चारित्र होने का विधान है, नियम है, सिद्धांत है। चारित्र पूर्वक श्रद्धा ज्ञान किसी को नहीं होता, होता है तीनों एक काल में, शुद्धोपयोग के काल में, लीनता के काल में ही स्वानुभव है, लीनता के काल में सम्यक दर्शन है, और लीनता वही चारित्र है, स्वरूप आचरण है। तीनों का काल है, एक है, लेकिन कारण कार्य एक नहीं है। कारण कार्य में तो ज्ञान पूर्वक श्रद्धान और श्रद्धान ज्ञान पूर्वक लीनता, लीनता पूर्वक श्रद्धान ज्ञान नहीं और श्रद्धान पूर्वक ज्ञान नहीं, ऐसी बात है। मोह का समूह नाश होता है, मैंने मोह का अभाव होता है, इसलिए ज्ञान से ही आत्मा की सिद्धि है, ज्ञान सिवा दूसरा कोई आत्म सिद्धि का साधन नहीं है। देखो गुरुदेव का ये फाइनल स्टेटमेंट है इस विषय में कि इसलिए, ये टोटल लगाता है सारे बात का, कि इसलिए ज्ञान से ही आत्मा की सिद्धि है, प्राप्ति है, अनुभव है, अनुभव में प्राप्ति होती है, वैसे तो प्राप्ति ही है लेकिन उसको प्राप्त हुआ है ऐसा कहने में नहीं आता जहाँ तक अनुभव नहीं होता। इसलिए ज्ञान से ही आत्मा की सिद्धि है और नास्ति से सिवा ज्ञान दूसरा कोई भी आत्म सिद्धि का कारण नहीं होता। ज्ञानम एकम साधनम साधनादि विधंसित, ये चर्चा पंचाध्यायी उत्तरार्ध 401 नंबर उत्तरार्ध के। अच्छा, इस विषय में हमारी चर्चा चल गई थी सुगानी जी के साथ, हम बैठे थे, वो दृष्टि के विषय में अपनी चर्चा चला रहे थे, तो हमने एक प्रश्न रखा था बीच में कि आप दृष्टि के विषय में बहुत इतना बोलते हैं कि ज्ञायक शब्द भी कम आता है आपके चर्चा में, आपकी भाषा में, पर गुरुदेव तो ज्ञायक ज्ञायक की बात बहुत करते हैं, तो क्या गुरुदेव को ज्ञान का पक्ष है और आपको श्रद्धान का दृष्टि का पक्ष है? ऐसा तो कहीं नहीं, हमने हल्के से थोड़ी मजाक में प्रश्न कर लिया था, तो उन्होंने भी मजाक में उत्तर दे दिया, हाँ आप ऐसा समझ लो हमको श्रद्धान दृष्टि का पक्ष होगा, भी किसी को ज्ञान का पक्ष होगा तो होगा, गुरुदेव के नाम लेकर नहीं बोले ऐसे। तो बोला कि ऐसा नहीं, हमारा कुछ इस सिलसिले में कोई बात खोलने का विचार है कि मुमुक्षु को साधन क्या होता है। ऐसा करके हमने वो पंचाध्यायी दह की वही गाथा उन दिनों में दिखाई थी कि देखिए आप गाथा इसको पढ़ो, पढ़ करके फिर बताओ आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने गाथा पढ़ ली और कुछ सेकंडों में ही उन्होंने ऐसे उत्तर दिया, अनादि अनंत ज्ञानियों को ऐसा ही होता है, ज्ञान ही साधन है, दूसरी बात करेंगे। मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, कोई दलीलबाजी नहीं किया, बोले कि सही है, वही बात सही, हमारा अनुभव भी वही बोलता है। इसका मतलब कि हमारा अनुभव भी वही बोलता है, बोलता है क्या परछाया है। अब तक के प्रवचन सुनने से यह तो श्रद्धा बैठी कि बाहर का छोड़ अंदर जाना और इसके लिए प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो इसके लिए अंदर में कैसे विकल्प लाना चाहिए, विकल्प की दोस्ती बहुत है ना, तो विकल्प कैसे अंदर लाना चाहिए, विकल्प को हमें नहीं छोड़ना है और अंदर भी जाना है, विकल्प बाहर जाता है, वह आत्मा को बाहर खींचता है और हमको अंदर जाना है, लेकिन विकल्प को साथ में लेकर के कैसे विकल्प लाना चाहिए, विकल्प लाना फाना क्या है, कैसे विचार करना कि आत्मसन्मुखता प्राप्त हो, ये विचार करने का विषय नहीं है, ये देखने का विषय है। बिना विचार देखा जाता है, ज्ञान अपने आप को स्वयं को देखता है, मात्र विचार करने से वस्तु का पता नहीं लगता, आत्मा का अनुभव नहीं होता, वस्तु तो प्रत्यक्ष है, मौजूद है, प्रकट है, बस इसी में प्रसर कर बैठ जाना, विराजमान हो जाना, सुगाने जी का वचनामृत लगाया हुआ है। जबकि वस्तु प्रत्यक्ष है और विचार वाली दशा परोक्ष ज्ञान की दशा है, तो हमें परोक्ष ज्ञान में भी प्रत्यक्ष वस्तु का दर्शन नहीं होने वाला, तो विकल्प में तो होने वाला है ही नहीं, विकल्प तो बहुत दूर की चीज है। ज्ञान में जो दर्शन होता है वो भी परोक्ष ज्ञान में नहीं होता है, ज्ञान जब प्रत्यक्षता को धारण करता है तभी दर्शन प्रत्यक्ष चीज का होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष तौर से प्रत्यक्ष को ग्रहण कर लेता है, जब यही परिस्थिति है तो विकल्प का तो बेचारे का कोई बूता ही नहीं है कि वो अनुभव करे। तो इस विषय का स्वाध्याय यह समाप्त होता है।